लात्वा अणुव्रत स्वीकार कर लिए उसने, और अणुव्रत स्वीकार करके उज्जैनी गत्वा उज्जैनी नगरी चली गई, और वसंत तिल का ग्रहम प्रविश, वसंत तिल का जो वेश्या थी, जो उसकी माँ थी, कमला की माई तो थी जिसने उसको दक्षिण प्रतोली में छोड़ा था द्वार पर, तो उसके घर जाकर जो पालनस्थम वरुणम, झूले में झूल रहा था वरुण बच्चा जो, वो इसके पूर्व जन्म की माँ वो थी काश्यपी का जीव, तो उसको आंदोलय थी, वो झूला झुलाने लग जाती है। उक्तंच कहा भी है, बालयनिसुनसु वर्णम तुझ सरिसाहि अठ दहनता पुत्तु भतिज्जौ भायौ देवरु पित्तियौ पोतज्जु। ये अपभ्रंश भाषा है, प्राकृत नहीं है। बालय निसुनसु, बालय मनु हे बाले, यानी उस कन्या से बोलते हूँ कमला से, निसुनसु सुनो, वयणम मेरे वचन सुनो, तुझ सरिस्सा ही अठदह नत्ता, तेरे समान 18 नाते, पुत्र भतीजा भाई देवर पित्यौ पिता और पोता, ये सारे नाते तेरे हो चुके। मम भर्तु पुत्रत्वात्त्वं पुत्र, वो क्या करते है? मुनिराज नहीं बोल रहे हैं उसको, वो उसको झूला झुलाते समय, क्या झूला झुलाते समय प्रायः वो अपभ्रंश भाषा में पुरानी माताएं गीत गाती थी, अपभ्रंशस्तु यत् शुद्धं तत्तत् देशेषु भाषितम्। अपभ्रंश भाषा की परिभाषा वाग्भट अलंकार ग्रंथ में आती है कि जिस जिस देश की जो देहाती भाषा होती है उसको अपभ्रंश बोलते हैं, और एक प्राकृत से मिलती जुलती जो अपभ्रंश है वो भी एक अलग भाषा है, ये वही वाली भाषा है। तो बालय निसुनसु, उस बच्चे को झुलाते झुलाते बोलते कि बेटा सुन, वर्णम मेरी बात सुन, तुझ सरिस्सा ही अठदह नत्ता, 18 नाते हैं तुझ सरिस्सा, तुझ सरिस्सा का मतलब क्या हो, तुझ यानी तेरे और सरिस्सा यानी समान, 18 नाते, पुत्तु भतिज्जौ भायौ देवरु पित्तियौ पोतज्जु। अब देखिए कैसे, तो मम भर्तु पुत्रत्वात्त्वं पुत्र, तू मेरे पति का बेटा है इसलिए मेरा बेटा हो गया, वो कौन कह रहा है, कमला, क्योंकि कमला देखो उस वरुण और कमला इन दोनों के बीच के रिश्ते की बात चल रही है, 18 नातों की कथा है, बोलते हैं कि तू मेरे पति का बेटा होने के कारण पुत्र है एक, फिर धनदेव भ्रातुः पुत्रत्वात् त्वं बालो भ्रातृव्यः, और तू बालक मेरे भाई धनदेव का पुत्र होने के कारण भ्रातृव्य है यानी भांजा है, भतीजा नहीं नहीं अच्छा नहीं, कोई स्त्री है उसके भाई का बेटा है उसको क्या कहेंगे, भतीजा बोलेंगे तब ठीक है, हमें क्या है कि ज्यादा रिश्तों का वो नहीं है कई रिश्ते तो आज तक हमारी समझ में नहीं है कि ये कैसे क्या रहते हैं, चलो अच्छा ठीक है, तो भतीजा है, धनदेव भ्रातु पुत्रत्वात् त्वं बालो भ्रातृव्य है, धनदेव नाम के मेरे भाई का बेटा होने के कारण तू बालक मेरा भतीजा है, फिर त्वं मदेक मातृत्वात् त्वं मम भ्राता, तेरी माँ और मेरी माँ एक होने के कारण तू मेरा भाई हुआ, क्या गजब की बात है धनदेवस्य लघु भ्रातृत्वात् त्वं मम देवर है, और धनदेव जो मेरा भाई है उसका भी तू उसी की माँ से बेटा उत्पन्न हुआ है इसलिए उसका छोटा भाई कहलाए, और उसका छोटा भाई होने के कारण मेरा देवर हो गया, धनदेवो मम तातः, तद भ्राता त्वं तेन मे पितृव्यः, धनदेव जो है वो मेरा तात यानी पिता है, वो कैसे है? नहीं नहीं वो आगे बढ़ गया। धन देवो मम तातः, अभी चार रिश्ते तो हो गए, पांचवा रिश्ता समझना पड़ेगा कैसा है। धन देवो मम तातः लिखा है ना मूल संस्कृत में। ऐसा अब आ गया, ठीक बात है। धन देवो मम तातः, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वसंत तिलका माँ थी, अब उससे माँ से उसने पति जैसा संबंध बनाया धनदेव ने, तो फिर वो मेरे लिए पिता समान हो गया। तो धनदेवो मम तातः, धनदेव मेरा तात यानी उसको हिंदी में बाप बोलते हैं। तो तद भ्राता, और उसका भाई होने के कारण त्वम तेन मे पितृव्य, इसलिए तू मेरा चाचा हो गया। अहम वेश्या सपत्नी तेन धनदेवो मत पुत्र तस्यापि त्वम पुत्र तस्मान मम पौत्रस्त्वम। बोले कि मैं उस वेश्या की सपत्नी हुई, क्योंकि धनदेव ने मुझे भी पत्नी बनाया और उसको भी पत्नी बनाया है, इसलिए मैं सौतन हो गई। सपत्नी का अर्थ सौतन होता है, तो मैं उस वेश्या की सौतन हूँ। तेन, इसलिए धनदेव जो है वो चूंकि वेश्या का पुत्र है इसलिए मेरा भी बेटा कहलाए। और तस्यापि त्वम पुत्र, और तू उस मेरे बेटे का बेटा होने के कारण तस्मान माम पौत्र मेरा पोता हो गया। हंसी तो आ रही है अपने को, लेकिन खैर ठीक है, अभी आगे चलने दो। इति शुशुना सह संबंध, इस प्रकार उस बच्चे के साथ जो संबंध थे, छह संबंध वहां गिना दिए उसने। फिर इसके आगे क्या बोलती है वो, तुह पियरो मह पियरो पियामहो तहय हवई भत्तारो भायौ तहविय पुत्तो ससुरो हवई सबालया मज्झ। तेरा पिता मह पियरो, मेरा पिता है, तेरा पिता मेरा पिता है, और पियामहो तहय हवई भत्तारो, और जो पितामह है तेरा वो मेरा भर्ता माने पति है। भायौ तहविय पुत्तो, और भाई उसी प्रकार से पुत्र है। ससुरो हवई बालया मज्झ, और ससुर जो है हवई वो ससुर भी है। स बालया मज्झ, बालया संबोधन है या कर्ता कारक है? इस निचली पंक्ति का अनुवाद क्या किया है पंडित जी ने, भायौ तहविय पुत्तो, पंडित कैलाश चंद जी की प्राकृत बहुत सुंदर थी। वो जब कसाय पावड़ की वाचना करते थे, खुरई की बात है, तो एकदम ऐसे पढ़ते जाते थे जैसे मतलब उनकी मातृभाषा हो, वैसे ही उसका हिंदी अर्थ करते जाते थे फटाफट। कसाई पावड़ का संपादन उन्हीं ने किया था। इसका स्पष्टीकरण अपन आगे पढ़ सकते हैं, संस्कृत में स्पष्टीकरण दिया है, तो अपभ्रंश भाषा होगी। धनदेवो वसंत तिलका भर्तृत्वात् मम पिता, और जो धनदेव है वो वसंत तिलका का भर्ता यानी पति संबंध प्राप्त करने वाला होने से मम पिता, मेरे लिए पिता है। त्वं मम पितृव्यस् तवापि स धनदेव ताततत्वात् मे पितामह, और तू मेरा पितृव्य यानि चाचा है, और धनदेव तेरा पिता है, इसलिए धनदेव रिश्ते से मेरा पितामह हो गया, दादा। तथा मम सोपि भर्ता, और इसी प्रकार वो मेरा भर्ता यानि मेरा भी पति है। और एकमातृत्वात्, और एक माँ होने के कारण सच मम भ्राता, मेरा भाई भी है। अहम वेश्याया सपत्नी, मैं वेश्या की सौतन हूँ, सच तस्या वेश्याया पुत्रत्वात्, और वह उस वेश्या का पुत्र होने के कारण, ममापि पुत्र मेरा बेटा है धनदेव, और वेश्या में श्वश्रूर में श्वश्रु रहन तस्या वधु हूँ, और वो जो वेश्या है वो मेरी सास हो गई और मैं उसकी वधु हो गई, क्योंकि पति की मां होने के कारण सास हुई और मैं उसके बेटे की पत्नी होने के कारण वधु हो गई। धनदेवो वेश्या भर्तृत्वात् मदीयः श्वशुरः, और धनदेव उस वेश्या का पति होने के कारण मेरा ससुर हो गया। इति धनदेवः देव धनदेवेन सह संबंध, इस प्रकार धनदेव के साथ मेरे ये छह संबंध हो गए, तेरे साथ छह संबंध, उस बच्चे से कह रही है कि तेरे साथ छह संबंध हुए और धनदेव के साथ छह संबंध हो गया। भावुज्जा मितुमं वा पियामही तह यमायरी सवई हवई वहूतः सासु एक हिया अठ दहनत्ता, तव भातृभार्यात्वात् मम भातृजाया। ये किसके साथ संबंध बता रही है आखिरी में? तुम्हारे भाई की पत्नी होने के कारण मम भातृजाया, मेरे भाई की बेटी, ये किसके साथ संबंध बना रहा है? अच्छा, मैं तुम्हारी भौजाई हो गई, उस बच्चे से कह रही कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूं, तो वो छह रिश्ते बता रही। पहले तो उसने अपने साथ बेटे के छह रिश्ते बताए, फिर अपने साथ पति के छह रिश्ते बताए, अब उसके बाद बोल रही है कि उस बेटे से बोल रही है कि तेरे मेरे साथ छह रिश्ते हैं, वो कौन से हैं? तो एक तो तब वो भ्रातृ भार्यात्वात्, तेरे भाई की पत्नी होने के कारण मैं भ्रातृजाया। एक मिनट, ऐसा है, तेरे भाई की पत्नी होने के कारण मम भ्रातृजाया, वो मेरी भौजाई, वेश्या के साथ संबंध बता रहे, बेटे के साथ अपना, वेश्या मेरे लिए कौन होती है वो बता रहे आप। तव भ्रातृ भार्यात्वात्, तेरे भाई की पत्नी होने के कारण मम भ्रातृजाया, मेरी भौजाई हो गई। और तव मम च धनदेव पिता, तेरा और मेरा धनदेव पिता है, ठीक है, तेरा पिता तो स्पष्ट है, लेकिन मेरा पिता इसलिए क्योंकि मेरी माँ का पति है, इसलिए मेरा पिता हुआ। और तस्यापि वेश्या माता, और वेश्या जो है उसकी माँ है, तेन मैं पिता मही सा, इसलिए मेरे लिए दादी हो गई। नहीं आया समझ? रुचि थोड़ी सी डावाडोल हो रही है आपकी, लग रहा है। तव मम च धनदेव पिता, मतलब उस बालक को झुलाते हुए कह रही है कि तेरा पिता धनदेव और मेरा पिता भी धनदेव, इसलिए क्योंकि मेरी माँ का पति। और तस्यापि वेश्या माता, और उसकी माँ वो खुद वेश्या है, इसलिए मेरे लिए वो पिता मही हो गई, दादी हो गई। धनदेवस्य तवापि सा मातृत्वात्, तेरी माँ भी वही है और धनदेव की माँ भी वही है, इसलिए ममा भी माता, मेरी भी माँ कहलाई। और मत भर्तृ भार्यात्वात् सा मे सपत्नी, और मेरे पति की पत्नी होने के कारण वो मेरी सौतन हो गई। धनदेव वो मत सपत्नी पुत्रत्वात्, और धनदेव मेरी सौतन का बेटा होने के कारण ममा भी पुत्रस मेरा बेटा हुआ। और तत् भार्यात्वात्, और मेरे बेटे की पत्नी होने के कारण मदिया सा वेश्या वधु, मेरे लिए वो वेश्या जो है वधु है, पुत्र वधु। और अहं धनदेव भार्या, मैं धनदेव की पत्नी, तस्य सा माता, उसकी वो माँ है वेश्या, तेन मैं श्वश्रु, इसलिए मेरी सासू है। एतत् श्रुत्वा ये सब सुनकर वेश्या धनदेव कमला वरुणादय ज्ञात वृत्तांता ये सब सुनकर के वेश्या धनदेव कमला और वरुण आदि सब जान लिया है वृत्तांत जिन्होंने मतलब अपनी सब पुरानी घटनाएं जिन्होंने समझ ली जाति स्मरी भूता और जाति स्मरण को प्राप्त हो गए हैं सब प्रतिबुद्धा और जागृत हो गए हैं। अभी तक तो सोए थे मोह की नशे में मोह की निद्रा में अब जागृत हो गए तपोगृहीत्वा अब दीक्षा ले लेते हैं स्वर्गं गता स्वर्ग को जाकर इति धनदेवादि दृष्टांत कथा इस प्रकार धनदेवादि के दृष्टांत संबंधी कथा पूर्ण होती है। अथ पंचविध संसारस्य नामानि निर्दिशति अब पांच प्रकार के संसार के नाम बतलाते हैं। संसारो पंचविहो दव्वे खेते तहेव कालेय भवभ्रमणो य चौथो पंचमो भाव संसारो। संसार पांच प्रकार का है द्रव्य संसार क्षेत्र संसार काल संसार भवभ्रमण संसार और भाव संसार। भ्रमण संसार का ही पर्यायवाची शब्द यानी द्रव्य भर भ्रमण भ्रमण कह लो परिवर्तन कह लो परावर्तन कह लो संसार कह लो। तो द्रव्य संसार क्षेत्र संसार काल संसार भव संसार और भाव संसार। द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव भव परिवर्तन करता संसरणम संसार परिवर्तनम भ्रमणम इति यावत् पंचविध पंच प्रकार प्रथमो द्रव्य संसार द्वितीय क्षेत्र संसार तथैव तृतीय काल संसार च पुनः चतुर्थो भव भ्रमण भव संसार पंचमो भाव संसार। अथ अब इसके आगे प्रथम द्रव्य परिवर्तन स्वरूपम निरूपयति अब इसके बाद एक एक संसार भ्रमण का वर्णन आगे की गाथाओं में आचार्य करेंगे और इस वर्णन को अगर कोई ध्यान से सुन ले तो रोंगटे खड़े हो जाए कि संसार भ्रमण कितना भयंकर होता है। अभी तो अपन इतना जानते हैं कि चार गति में जीव भटकता है और सैकड़ों बार सुना है कि अनादिकाल से जीव संसार में भ्रमण कर रहा है कोई असर नहीं पड़ता बिल्कुल जैसे वाटरप्रूफ ड्रेस में पानी अंदर नहीं जाता उसी प्रकार इन शब्दों का अपने हृदय में कभी प्रवेश नहीं होता। सैकड़ों बार सुनते हैं सुनाते हैं लेकिन न कभी आंखें भीगती है न हृदय में कंपन आती है न रोंगटे खड़े होते हैं बिल्कुल व्यर्थ है वो तोता रटंत। इसलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने समय सार में कहा पाठो न करे दि गुणम ये जो पाठ है शब्दों का उससे तुम्हारे एक भी फायदा नहीं होने वाला है। जब तक वो भाव नहीं आता अनुप्रेक्षा तो एक अभ्यास है और इसका परिणाम क्या है इसका परिणाम है वो भाव जिसका नाम है वैराग्य। बार बार अपन पढ़ते हैं सुनते हैं समझते भी हैं कुछ बातों को लेकिन कभी अंदर से आंदोलित नहीं होते हिलते नहीं। इसीलिए तो इतने मजबूत होने के कारण ही तो अपन एक खंबे के समान इस संसार में अडिग हैं कोई हिला नहीं सकता संसार से अपने। और अगर गुरुओं के उपदेश हिला दे आपको या फिर जिनवाणी के वचन आपको उद्वेलित कर दे तो फिर कुछ आगे का कोई नया भविष्य तैयार हो सकता है नहीं तो वही जैसा भूत था वैसा ही भविष्य है। भूतकाल में पंच परिवर्तन किए हैं भविष्य काल में भी वही रवैया रहेगा। और इस धोखे में बिल्कुल मत रहना कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ या मेरा फलाना गुणस्थान है। कोई नहीं जानता किसका कौन सा गुणस्थान है कौन जानता है। और जो लोग ये कहते हैं एक ऐसा भी वर्ग है अपनी जैन समाज में जिनका कहना है कि माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो क्या उसको पूछना पड़ता है किसी से कि मेरा बेटा हो गया क्या नहीं उसको स्वयं पता रहता है उस वेदना का अनुभव प्रसूति का एहसास उसको स्वयं हो जाता है तो उसको किसी से पूछना नहीं पड़ता। इसी प्रकार जिस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उसको भी किसी और से नहीं पूछना पड़ता कि मैं मुझे सम्यक दर्शन है क्या। लेकिन ये दृष्टांत एक कल्पित दृष्टांत है, शास्त्रीय दृष्टांत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा उल्लेख नहीं है कि हर सम्यक दृष्टि को पता हो कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। साक्षात तद्भव मोक्षगामी और केवली प्रणीत सम्यक दृष्टि जीव, केवली भगवान ने जिनको सम्यक दृष्टि कहा है शुरू से, ऐसे बलभद्र भगवान राम वो भी केवली भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, आपने जो उपदेश दिया संसार में दो प्रकार के जीव हैं, कुछ भव्य हैं कुछ अभव्य हैं। अभव्य सर्वदा संसार में रहते हैं, क्या मैं भव्य हूं? ये प्रश्न कौन कर रहे हैं? राम कर रहे हैं। और राम कौन है? आगम कथित सम्यक दृष्टि। हमारे आपके द्वारा किसी को टाइटल दे दिया जाए कि ये सम्यक दृष्टि है, वैसे नहीं, केवली भगवान जान रहे हैं कि वो सम्यक दृष्टि है। लेकिन वो केवली भगवान से क्या पूछ रहे हैं? क्या मैं भव्य हूं? इस प्रश्न का क्या अर्थ है? जिसको ये पता हो कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, क्या पूछेगा वो कि मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं? क्योंकि सम्यक दर्शन होता ही भव्य को है। अभव्य को होता है क्या कभी सम्यक दर्शन? अभव्य का एक ही गुणस्थान है, दोपहर में अपन पढ़ रहे हैं, उसका होना ही नहीं, कभी न हुआ न होगा। लेकिन राम ने भगवान से पूछा है कि क्या मैं भव्य हूं? तब भगवान उत्तर देते हैं, चरम शरीरी भव्य हो, यानी इसी जन्म से मोक्ष जाने वाले भव्य हो तुम। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि उसी जन्म से मोक्ष जाने वाले सम्यक दृष्टि भव्य को भी मैं कौन से गुणस्थान में हूं ये पता नहीं होता। और ये आचार्य वचन है। पद्म पुराण ग्रंथ को जो लोग अप्रामाणिक मानते हैं वो जैन दर्शन की नए व्यवस्था से नितांत अपरिचित लोग हैं। रतनलाल कटारिया ने, पंडित रतनलाल कटारिया केकड़ी वालों ने जैन निबंध रत्नावली में एक लेख लिखा है, और वो लेख अंततः पद्म पुराण के खिलाफ जाता है। और अभी जिन भाषित वाले उस निबंधावली से न जाने क्यों इतने अधिक प्रभावित हैं कि वो प्रायः जिन भाषित में उसमें से निकाल करके लेख प्रकाशित करते रहते हैं। अब संयोग ऐसा है कि मतलब हमसे इस प्रकार के लोगों की मुलाकात नहीं हो पाती, नहीं तो फिर कभी ऐसी चर्चा में कई बातें आदान प्रदान में खुल सकती हैं। कई चीज़ें ऐसी होती है जो आप दुश्मन समझो किसी को, लेकिन फिर भी दुश्मन से भी आप कुछ सीख सकते हैं। तो कभी सीखने से परहेज नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर उन्होंने मतलब जो बात लिखी है उसके आधार पर जितने पाठक हैं सबके दिमाग में एक धारणा बनती है कि पद्म पुराण जो है वो मिथ्या ग्रंथ है, बोले कुशास्त्र है, इसके सिवा कोई धारणा बनती नहीं। और कोई मानता नहीं पद्म पुराण को कि ये मतलब अपने जैन परंपरा का शुद्ध ग्रंथ है, ऐसा मान्यता बहुत कम लोगों की, मुनियों में भी, क्योंकि मुनि भी भोले भाले हैं। भोले भाले का मतलब क्या है? सरल प्रकृति है। वो जो कुछ पढ़ते हैं, कोई तर्क वितर्क के साथ कोई बात प्रस्तुत की जाती है, उसको पढ़ने के बाद उनको भी विश्वास हो जाता है कि बात तो सही लग रही। लेकिन इससे पहले अपने को अपना व्यवहार सम्यक दर्शन, मतलब जिसको आप व्यवहार भी मत कहो, उपचार सम्यक दर्शन, वो पक्का कर लो कम से कम। मतलब इतना पक्का होना चाहिए अपना विश्वास शास्त्रों के प्रति कि दुनिया गलत हो सकती है लेकिन जिनवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। जब तक इतनी आस्था नहीं होगी तब तक आप पक्के मिथ्या दृष्टि है, ये आप लिख लो आज। जिनवाणी गलत नहीं हो सकती, इतनी श्रद्धा अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर आप निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि है। और यहां तक के हम कहते हैं कि गुरु गलत हो सकते हैं, लेकिन जिनवाणी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि जिनवाणी सर्वज्ञ भगवान की वाणी है और गुरु छद्मस्थ है। और गुरु गलत कैसे हो सकते हैं, इसका उल्लेख हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। गोमटसार जीवकांड में, लब्धिसार में, क्षपणासार में और कसाय पाहुड़ ग्रंथ की मूल गाथा में ये उल्लेख है कि गुरु से भी भूल चूक हो सकती है, लेकिन भगवान से कभी भूल चूक नहीं होती। तो भगवान की वाणी को जो मिथ्या मानते हैं, गंधर्वों का मद्यपान क्या है कि भाषा, आप जिसने साहित्य का अध्ययन नहीं किया और वो लंबी चौड़ी बात करके किसी आचार्य की वाणी का खंडन करे और जिन वाणी को मिथ्या सिद्ध करे, उससे बड़ा मिथ्या दृष्टि और कौन हो सकता है। एक तो वो अजैन मिथ्या दृष्टि है जिसको किस्मत ने वहां पैदा किया कि उसको कहीं देवशास्त्र गुरु का समागम ही नहीं मिला, और एक वो मिथ्या दृष्टि है जो अपने आप को शुद्ध सम्यक दृष्टि समझ रहा है। अब विचार करो, इन दो में से सम्यक दर्शन होने की संभावना किसमें अधिक है? देखो, उसमें भी क्या है कि पुण्य के योग की बात है। अगर उस व्यक्ति को जो अनायतनों में जी रहा है, कदाचित कभी कर्म योग से कहीं बाहर गुरु का प्रवचन हो रहा, वहां पर उसको देशना लब्धि हो जाए, उसको जल्दी सम्यक दर्शन हो जाएगा। लेकिन जिसको अपनी बुद्धि पर अभिमान है और जो अपने निर्णय को अंतिम निर्णय मानता है, जो अपने आप को केवली से कम नहीं समझता, उस मिथ्या दृष्टि को कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा अनर्थ छोड़ देना चाहिए। हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, ये सब जैनाभासी ग्रंथ, 53 ग्रंथों की लिस्ट बना दी लोगों ने कि ये सारे ग्रंथ मूल ग्रंथ नहीं बोले। ये फैसला करने का लाइसेंस कहां से मिल गया उनको, ये हम जानना चाहते हैं। अगर ये मूल ग्रंथ नहीं है तो फिर शास्त्र भंडारों से निकाल करके इनको पानी में सिरा देंगे? पद्म पुराण को, हरिवंश पुराण को, भाव संग्रह को, और कितना 53 ग्रंथ किसको कहते हैं आप? क्योंकि सीधी सी बात उसमें ये थी कि उनकी मान्यता पुष्ट नहीं हो रही थी इन ग्रंथों से, तो इसलिए इन्होंने ग्रंथों को ही जैन आमनाए से बाहर अलग कर दिया। किसी को यापनी संघ का बता दिया, किसी को काष्ठा संघ का बता दिया, किसी को और किसी मान्यता से प्रभावित बता दिया, और इस प्रकार फिर बचे कितने ग्रंथ। और आदि पुराण पर भी पूरी श्रद्धा नहीं है, नाम आदि पुराण है और उनकी श्रद्धा उस पर आधी है, क्या करोगे? जनेऊ का वर्णन सुनकर के उनके अंदर पता नहीं कैसी बातें आने लग जाती है मन में। फिर और जो चर्चा है उसमें श्रावक की क्रियाएं दी हुई बहुत सारी बातें हैं, मतलब गृहस्थ जीवन संबंधी, तो उन बातों को लगता है ये सब क्रियाकांड ब्राह्मणों से आया होगा। और ये सारे विद्वान जो बड़े बड़े दिग्गज विद्वान कहलाने वाले भारत के, उन्होंने अपने संपादकीयों में, प्रस्तावनाओं में, अपने लेखों में, निबंधों में बेधड़क ये सारी बातें लिख दी कि आचार्य जिनसेन स्वामी उस समय के ब्राह्मणवाद से प्रभावित होकर इस प्रकार लिख गए। जो राजा अमोघ वर्ष के दरबार में जाकर डंके की चोट पर जैन धर्म की प्रभावना करके आ गए, जहां पर साक्षात ब्राह्मण पुरोहित बैठे हुए, जहां पर बड़े बड़े क्षत्रिय वंशी और सामंत विद्यमान हैं, और जहां सभी वर्ण के लोग आकर के जिनसेन स्वामी की उस व्याख्या को सुन रहे हैं, उस व्याख्या में जो डंके की चोट पर जैन धर्म की प्रभावना करके आ गए, कितनी विचित्र बात है कि आज का विद्वान कह रहा है कि वो ब्राह्मणवाद से प्रभावित थे इसलिए उन्होंने आदि पुराण में जनेऊ को जोड़ दिया। कितनी उटपटांग बात है। एक बार एक ब्रह्मचारी पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य वहां वाचन कर रहे थे, ब्रह्मचारी जी ने कहा कि हो सकता है वो जनेऊ वाली श्लोक क्षेपक हो। क्षेपक का मतलब ये होता है कि कभी कभी शास्त्र जो लिख करके चले जाते हैं आचार्य, तो उसकी जब कॉपीज की जाती है, पांडुलिपि से दूसरी प्रतिलिपि बनाई जाती है, तब कुछ श्लोक ऐसे रहते हैं जो इधर उधर से उसमें जुड़ जाते हैं, वो क्षेपक कहलाते हैं। तो क्षेपक हो, ऐसा बोला जब ब्रह्मचारी ने, तब पंडित जी वैसे शांत प्रकृति के थे, लेकिन उस समय उन्होंने बिल्कुल ओजस्वी स्वर में कहा कि जब मैंने आदि पुराण का अनुवाद किया तो हिंदुस्तान के 12 स्थानों